कृपया दोहराइए। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की राज्ञां राजाओं को वृतिम जीविका का साधन कर लगान टैक्स आदान माफ कीजिएगा लगान टैक्स आदान वसूली दंड दंड शुल्क अर्थ दंड आदि इत्यादि दारुणाम अत्यंत कष्टप्रद मन्यमानः मानते हुए दीर्घ लंबा स्तत्र यज्ञ व्याजेन बहाने से विससर्ज त्याग दिया हा प्राचीन काल में। तो अनुवाद कृपया सुनिए पहले। जब भी परम शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना प्रजा को दंड देना या उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता तो ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था। फलतः उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया और वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। कृपया दोहराइए अनुवाद। जब भी परम शक्तिशाली अंतर्धान को प्रजा से कर लेना प्रजा को दंड देना या उस पर कठोर जुर्माना लगाना होता तो ऐसा करने को उनका जी नहीं चाहता था। फलतः उन्होंने ऐसे कार्यों से मुख मोड़ लिया और वे विभिन्न प्रकार के यज्ञ संपन्न करने में व्यस्त रहने लगे। तात्पर्य यहां पर यह स्पष्ट है कि कभी कभी राजा होने के नाते राजा को ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो वांछनीय नहीं होते, यथा अर्जुन युद्ध करने के लिए बिल्कुल इच्छुक ना था क्योंकि अपने संबंधियों तथा परिजनों से युद्ध करना या उन्हें मारना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर भी क्षत्रियों को ऐसे अवांछित कार्य कर्तव्य के रूप में करने ही पड़ते थे। कर वसूलते समय या अपराध कार्य के लिए प्रजा को दंडित करते समय महाराज अंतर्धान को तनिक भी प्रसन्नता ना होती। फलतः उन्होंने यज्ञ करने के बहाने कम उम्र में ही राजसी शक्ति से मुख मोड़ लिया। ओम अज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो महाराज पृथु के ये सबसे बड़े पुत्र हैं जिनके बारे में चर्चा हो रही है। एक बार एक भक्त थे, अगर मैं गलत नहीं तो साउथ अमेरिका या कहीं के थे। उन्होंने विश्वेश्वर प्रभुपाद जी के पास आए और वो कहते कि मैं और कुछ कार्य नहीं करना चाहता, केवल हरि नाम 24 आवर 24 घंटे मैं जप करना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले और इस बात से वो प्रसन्न नहीं थे। ये कथा मैंने हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के लेक्चर में सुनी अभी कुछ दिन पहले। तो वो भक्त मायापुर चला गया और उसने कहीं पर अपनी रहने का स्थान या जिसे कुटीर कहते हैं वो बना ली और वो जप करने लगा सुबह शाम दोपहर रात 24 आवर। और कुछ समय बाद लगभग एक या दो महीने बाद वो भक्त वहां से चला गया, किसी को नहीं पता चला कहाँ गया वो, ना तो मायापुर में, ना कहीं, ना इस्कॉन मंदिर में, किसी में, कहीं पर नहीं दिखा। तो ये कथा से ये समझ में आता है कि जब कोई भी सेवा प्रिस्क्राइब ना की गई हो गुरु के द्वारा, इवन आध्यात्मिक, अगर वो आध्यात्मिक भी है, उसको करने का ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी खुश नहीं थे उससे। ऐसे ही और एक और प्रभुपाद लीलामृत में कथा है, हिज होलीनेस जो बॉम्बे मंदिर जिन्होंने बनवाया है माता जी, काफी धनी परिवार से थे वे, एक ही बच्चे हैं, भक्ति एक ही, मतलब परिवार के एक ही बच्चे हैं, प्रभुपाद जी के बड़े निकट सन्यासी हैं और अभी भी आते हैं वृंदावन में। यस थैंक यू माता जी, गिरिराज महाराज, गिरिराज महाराज को यह सेवा दी गई थी कि जोहू मंदिर उन्होंने बनवाना था, कंस्ट्रक्शन की सेवा थी उनके पास। तो एक बार प्रभुपाद जी आए बॉम्बे जोहू और गिरिराज महाराज बड़े परेशान थे, कहते प्रभुपाद, एक तो अमेरिकन, हिंदी भी नहीं आती थी उस वक्त, तो फिर बॉम्बे में कंस्ट्रक्शन करवाना, भारत में कंस्ट्रक्शन करवाना कोई आसान कार्य नहीं है, ये तो भारत हम सबको पता होगा, तो उस वक्त कंस्ट्रक्शन करवाना, तो बड़े परेशान थे। तो उन्होंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना करी, प्रभुपाद जी ये मुझे, मैं कभी भी मतलब भगवान का चिंतन नहीं कर पाता, कृष्ण का चिंतन नहीं कर पाता, हमेशा मेरे मन में सीमेंट की बोरियां और कभी ईंटों के बारे में चिंतन चलता रहता है। प्रभुपाद जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है जब अर्जुन युद्ध कर रहा था तो वो क्या लीलाओं का स्मरण कर रहा था? ये जवाब था प्रभुपाद का। और ये एक और घटना जी मैंने गुरु हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज के ही लेक्चर में सुनी कि वो ठक ठक आवाज आती थी कंस्ट्रक्शन में, कई बार देर रात तक भी कंस्ट्रक्शन चलता था, तो प्रभुपाद जी कहते, देखो ये करताल की आवाज है, ये जो मंदिर बनने में जो परेशानी आ रही है, ये आवाजें आ रही है, करताल की आवाज आई है। तो गिरिराज महाराज को उन्होंने सेवा से नहीं हटाया, मतलब सेवा बदली नहीं। इसमें इस श्लोक में अंतर्धान जी ने, अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली इसको पढ़ेगा सामान्य रूप से, कि इसमें लिखा है, दंड देना या उस कठोर जुर्माना लगाना होता तो ऐसा करने में उनका जी नहीं लगता था, तो उन्होंने क्या करा, यज्ञ करना शुरू कर दिया, मतलब उन्होंने अपनी वो सेवा छोड़ दी, जो राजा की कर्तव्य तो छोड़ दी उन्होंने। कोई व्यक्ति कहेगा हाँ हाँ मेरा भी जी नहीं लगता किसी सेवा में, मैं दूसरी सेवा करूंगा, बहुत आसानी से इसको ऐसे से इसको जीवन में उतारा जा सकता है श्लोक को, लेकिन प्रभुपाद जी इसको जानते हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य भावार्थ है, तात्पर्य नहीं, उनके भावों का, उनकी एक्सटेसीज है। तो उन्होंने अर्जुन का उदाहरण दे दिया बीच में कि अर्जुन भी युद्ध करने के इच्छुक ना थे, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, अच्छा गुण है ये, नो डाउट, किसी को सजा देना, मारना, अच्छा ना लगना बहुत अच्छा गुण है, हर एक के मन में दया होती है। लेकिन क्या अगर हम भगवद गीता को पढ़ते हैं कि अर्जुन ने युद्ध नहीं करा क्या? नहीं, अर्जुन को तो भगवान ने क्या बोला, मूर्खों की तरह बात कर रहे हो तुम, है ना? क्या श्लोक है 2:11, बहुत सुंदर से बोला भगवान ने, कि किसी का श्लोक याद है वो 2:11 और 1:11, हाँ 2:11, उसके बाद ही भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को ये अशोच्यान वचोस्तम प्रज्ञावाद भाषसे गता सुन गता अशोच्या नानुशोचितम पंडिता। उससे पहले अर्जुन ने सारे कारण दिए हैं कि मैं युद्ध इसलिए नहीं करूंगा, या युद्ध उसलिए नहीं करूंगा, मैं अपने परिवार को मारूंगा, क्या तुम अपने गुरु को मारोगे, बहुत सारे कारण दिए और सारे मतलब शास्त्रों के उदाहरण दिए, ऐसे नहीं कोई भौतिक उदाहरण दिया अर्जुन ने, क्योंकि अर्जुन भाई कल्चर व्यक्ति था, एक जानता था धर्म को अच्छे से। अर्जुन ने क्या बोला, मूर्ख हो कि तेरे बातें कर रहे हो, ना अनुशोचित पंडिता, कुछ सोचते ना पंडितों की तरह बातें कर रहे हो लेकिन हो मूर्ख। उसके बाद भगवान ने पूरा फिर शुरू कर दिया कि तुम आत्मा हो और पूरा शुरू करो। उसके बाद भी कई प्रश्न उठाए, लेकिन उससे पहले, क्योंकि उसका भी जी नहीं लग रहा था, मन नहीं कर रहा था कि मैं युद्ध करूं, मन क्या उसके तो हाथ पांव कांप रहे थे अर्जुन के। तो अगर हम इस तरह से श्लोक को समझेंगे या अनुवाद पढ़ेंगे तो ये जो जीवन का जो इस श्लोक से जो शिक्षा लेंगे बड़ी खतरनाक शिक्षा हो जाएगी। जैसे हमने देखा प्रभुपाद लीलामृत से, हमने भी सुना कि कई भक्त ऐसे जो नहीं चाहते थे, और अर्जुन से शास्त्रों से हम सुन रहे हैं अर्जुन को भी यही प्रॉब्लम था, नहीं करना चाहता था वो, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, युद्ध करना पड़ेगा तुम्हें। तो भक्त को ये जो प्रिस्क्राइब ड्यूटीज कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में या आदेशित कार्य कह लीजिए, जो प्रिस्क्राइब गुरु के द्वारा दिया जाता है कार्य, उसको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि गुरु स्वयं ना कहे। क्योंकि ये जो कार्य हैं बड़े, अदरवाइज भगवद गीता में ही आगे चल के भगवान बोलते हैं कि इस तरह को छोड़ने से बड़ा खतरनाक है ये कार्य, या उसके लिए उससे वो उस कार्य को अगर वो छोड़ेगा तो उससे उसको कोई लाभ नहीं होगा, उससे उसको नुकसान ही होगा। तो एक भक्त को कभी भी इस तरह से कोई कार्य नहीं छोड़ने चाहिए, खासकर जो आदेशित कर्म है। अब ये प्रश्न उठता है या क्वेश्चन मन में आ सकता है कि अंतर्धान महाराज ने अपना कार्य छोड़ दिया तो ये क्या पाप कार्य था, प्रश्न हो सकता है। इन सारी जो हम लीलाओं का प्रभुपाद लीलामृत या भगवद गीता में से सुनते हैं, नहीं, क्यों? अगर आप महाराज अंतर्धान के बारे में सुने, उनके बारे में पिछले हिस्ट्री में सुने, तो इससे जैसे शुरुआत से ही हम सुने कि उनका जो कैरेक्टर क्या था, वो पहले तो वो सबसे बड़े पुत्र थे पृथु महाराज के, केवल पृथु महाराज के सबसे बड़े पुत्र होने की वजह से उन्हें राज्य नहीं मिला था, यह राज्य का सेवा नहीं दी गई थी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा मतलब उसमें निपुण भी थे या सबसे ज्यादा क्वालिफाइड थे व्यक्ति। पृथु महाराज के और भी पुत्र थे लेकिन वो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड थे। क्यों क्वालिफाइड थे, इससे पहले वाले श्लोक में मैत्रेय मुनि बताते हैं, क्योंकि उन्होंने ये बात बोलनी थी तो उससे पहले उनके बारे में बता रहे हैं कि अंतर्धान महाराज के क्या गुण थे। जैसे कि उससे पहले कल वाले श्लोक में आपने सुना होगा कि महाराज अंतर्धान के नमस्वती नामक एक दूसरी पत्नी थी जिसने उन्हें अविर्धान नामक एक अन्य पुत्र की प्राप्त हुई। चूंकि महाराज अंतर्ध्यान अत्यंत कठोर थे, अत्यंत उदार थे, अतः उन्होंने यज्ञ से अपने पिता के घोड़े को चुराते हुए इंद्रदेव को मारा नहीं। इससे क्या मतलब, क्यों बोला गया श्लोक, इसीलिए क्योंकि अगले श्लोक में मैत्रेय मुनि बताना चाह रहे थे कि वह अब राज्य की सेवाएं छोड़ना चाह रहे, छोड़ देंगे, तो उससे पहले उनके गुण बताए कि इन, जब आपको हमने सुना होगा पृथु महाराज की कथा में, कि जब पृथु महाराज के 99 यज्ञ हो चुके थे और 100वें यज्ञ करना चाहते थे, तो इंद्र उनका घोड़ा चुरा के ले गया और ये इन्होंने देखा था अंतर्धान, इनका नाम ही इसीलिए पड़ा अंतर्धान। इससे पहले उनका नाम था विजिताक्ष, उन्होंने देखा लेकिन उसको रोका नहीं और उसको मतलब पकड़ के लाए, लेकिन उसको सजा नहीं दी। देखिए कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है और फंक्शन हमारे घर में मान लीजिए, और उस फंक्शन की पूरी तैयारी हो चुकी है और बस उसका पूर्ण मतलब उस फंक्शन का पूरा होने वाला है, और पूरा होने से पहले कुछ ऐसी कोई व्यक्ति घटना कर दे। मान लीजिए उदाहरण दे के, हमारे घर में हमारी बहन की शादी है या हमारी पुत्री की विवाह है, और बस यज्ञ होने मतलब फेरे, वो फेरे लेने वाले वो जो लेते हैं 7 फेरे, और ऐसे टाइम पे कोई व्यक्ति आए और मान लीजिए प्रीस्ट कोई उठा के ले जाए, पुजारी कोई उठा के ले जाए, कैसा लगेगा हमारे में मन में? अरे क्या कर रहे हो ये तुम, कौन पढ़ेगा मंत्र, फेरे होने वाले खत्म होने वाले हो, तुम पुजारी को उठा के ले जा रहे हो, एकदम गुस्सा आ जाएगा, युद्ध शुरू हो जाएगा वहां पर। ऐसे ही कार्य इंद्र जी ने करा, क्योंकि घोड़े के बिना यज्ञ होना ही पूरा नहीं था, घोड़े को उठा के ले जा रहे थे। लेकिन जो ये विजिताक्ष है, अंतर्धान है, उन्होंने उनको मतलब कुछ नहीं करा, बस घोड़े को वापस ले आते थे बार बार। तो ये इसलिए बोला कि उनमें ये गुण था। और प्रभुपाद जिसके तात्पर्य में लिखते हैं कि जो भक्ति में बड़ा चढ़ा व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति की इस तरह के घोर कर्म को भी माफ कर देता है, और वो विजिताक्ष तो जानते हैं कि ये इंद्र है, ये भगवान के भक्त हैं, इन्होंने ऐसे गलती करी है कोई बात नहीं। और प्रभुपाद जी उसमें वाले भगवद गीता का वो श्लोक का उदाहरण देते हैं जिसमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर गलती से भक्त गलती से कोई घोर कर्म में लग भी जाता है लेकिन साधु लोग उसको भक्ति मानते हैं। 933वां श्लोक का उदाहरण दिया, अपिचेतु दुराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, उसका उदाहरण दिया है। तो विदिताक्ष जी जानते थे, इसीलिए उनके जो और भी कई गुणों के बारे में बताया गया है। इससे पहले वाले श्लोक में कि उनके पुत्रों के बारे में बताया गया कितने शक्तिशाली उनके पुत्र थे, और अगर हम इन सब चीजों को ध्यान में रखें कि जैसे उनको राजा बनाया गया, तो क्या वो अपनी मर्जी से राजा बन गए? नहीं, क्योंकि पहले जो राजाओं के जो भी निर्णय होते थे, डिसीजन होते थे, वो ब्राह्मणों के विचार विमर्श से होते थे, उनके अपने सेक्रेटरी कह लीजिए नॉर्मल भाषा में, या ब्राह्मण लोग होते थे, उनके ब्राह्मण होते थे, उनके अनुसार से वो कोई भी निर्णय लेते थे, अपने आप कोई निर्णय नहीं लेते थे। वे राजा बने, पहले ब्राह्मणों ने डिसाइड करा होगा, पहले सोचा कि नहीं इसको ही राजा बनाना चाहिए, तब वे राजा बने, अपने आप राजा नहीं बन गए। और उसके बाद मतलब एक राजा का पद होना या कोई पोजीशन होना, आप लोग समझ सकते हैं उसमें कितना मतलब सुविधाएं मिलती हैं, राइट? आप कोई ऑफिसर बन जाए तो कितनी सुविधाएं मिलती हैं, गाड़ी है आपके पास, कोई हम अगर हम अपने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत में संघ में देखें, अगर किसी के पास कोई पोजीशन है उसके पास कितनी सुविधा होती है। लेकिन यहाँ पर अंतर्धान महाराज या विजिताक्ष महाराज, पृथु महाराज के पुत्र, बिल्कुल भी अटैच नहीं थे उनसे, कंप्लीटली डिटैच। ये एक भक्त का गुण होता, जैसे अर्जुन का गुण था। अर्जुन ने युद्ध करा बाद में, लेकिन किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान चाहते हैं अब युद्ध करना। ये जो भगवद गीता बोली गई और इसमें जो शिक्षा है वो हम जैसे जीवों के लिए। ये जो कथा पृथ्वी महाराज की बहुत पहले के युग की है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसमें भगवद गीता का उदाहरण दिया है। कोई और भी उदाहरण दे सकते थे, कहीं से भी उदाहरण दे सकते थे प्रभुपाद जी, लेकिन भगवद गीता का उदाहरण दिया और स्पेशली अर्जुन के बारे में बताया कि वे भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन युद्ध करा उन्होंने। फिर तो तो विजिताक्ष जो थे अंतर्धान महाराज हैं, उन्होंने ऐसा नहीं था लेकिन विजिताक्ष के बाद कोई राजा नहीं था, उनके और भी कई भाई थे और सब समक्ष थे। तो उससे एक शिक्षा तो ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है कि कोई भी प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए जो हमें सेवा मिली गई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर कोई भक्त है मंदिर में और उसको मान लीजिए अगर वो दीक्षित भी नहीं है, उसकी अथॉरिटी कोई सेवा देती है, तो उसको अगर वो उस सेवा को बड़े ध्यान पूर्वक करेगा, क्योंकि वो अथॉरिटी से सेवा उसके पास आई है, अगर उसको ध्यान बड़े ध्यान पूर्वक करेगा तो ये 100% है कि उसकी भक्ति में वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रिस्क्राइब्ड है। आपको शायद याद होगा यहाँ पर हमारे एक दादू होते थे, चरणामृत देते थे, जो पुराने भक्त उनको पता होगा, विभु चैतन्य प्रभु। थैंक यू माता जी। विभु चैतन्य प्रभु आपको पता है, कुछ लोग किन किन को पता है, किन 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 लोगों ने उनके दर्शन करे? विभु चैतन्य प्रभु, विभु चैतन्य प्रभु जब आए थे तो वो यहाँ पर अकेले कुकिंग करते थे और उस वक्त गैस वगैरह कुछ नहीं होती थी राधा श्याम सुंदर जी के लिए, और वो लकड़ी पे और गाय के जो उपले होते हैं उन पर कुकिंग होती थी। तो बहुत सुबह से लेकर रात हो जाती थी, तो उनके पास समय नहीं होता था मतलब अपनी जैसे कह लीजिए एक साधना करने के लिए। इस जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ इसको इमिटेट मत कीजिएगा, क्योंकि हम इमिटेट नहीं करते, लेकिन जो शिक्षा है उस पर ध्यान दीजिएगा कि वो जो विभु चैतन्य प्रभु थे सुबह से शाम तक उनके पास भागवतम पढ़ने या भगवद गीता पढ़ने के लिए भी समय नहीं होता था, और बड़ी मुश्किल से जब भी हो पाता था उनका। तो प्रभुपाद जी से उन्होंने ये चिंता दोहराई, प्रभुपाद जी ने कहा कोई बात नहीं आप लगे रहिए ये सेवा करते रहिए, और उन्होंने मतलब जब तक उनका शरीर उनका साथ दिया उन्होंने वो सेवा करी। उसके बाद उन्हें चरणामृत देने की सेवा दी गई। देखिए सिंपल सेवा है, कोई बहुत इंटेलेक्चुअल सेवा नहीं है, कोई बहुत जाके उसमें नेम फेम नहीं मिलेगा, कोई बहुत सुविधा नहीं मिलेगी चरणामृत देने में, क्या सुविधा मिलेगी? वही एक रूम है जिसमें दो चार भक्त रहते हैं, साथ में रहना है सब कुछ, मतलब मैं इस तरह से प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के बारे में बता रहा हूँ। तो वो चरणामृत देते थे, और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मतलब आज उनका शरीर छोड़ने के बाद उनका जो तिरुभाव दिवस मनाते हैं हम, ऐसे ही आप जयदेव गोस्वामी, माफ कीजिएगा क्या नाम था उनका, जयदेव प्रभु नहीं, जो जरा रथ कार्ड बनाते थे, जयानंद प्रभु, जयानंद प्रभु के बारे में भी सुना होगा आपने कि वो भागवतम क्लास में कई बार सो रहे होते थे और भक्त लोग देखते कि वो सो रहे हैं, प्रभुपाद जी कहते थे उनको मत उठाओ, वो सेवा से इतने ज्यादा थक गए हैं कि भागवतम क्लास में, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी ने स्वयं कहा कि व्यक्ति भगवत धाम चले गए हैं। ये होती है शक्ति प्रिस्क्राइब ड्यूटी की, जो हमें सेवा मिलती है उसको करते हैं जब हम, इंडिपेंडेंट सेवा कुछ नहीं होती कि स्वतंत्र हो गए जो मेरी इच्छा करेगी वो करूंगा ना, उसमें भगवती मतलब भक्ति नहीं बढ़ेगी आगे, क्योंकि उसमें विद्रोह है ना, समर्पण नहीं है, इसी विद्रोह के कारण तो हम भौतिक जगत में है कि भगवान से नहीं मैं ये सेवा नहीं करूंगा, जो भी कारण है। तो इस तरह से जब हम सुनते हैं तो जो और भक्तों के जीवन में देखते हैं, विभु चैतन्य प्रभु, जयानंद प्रभु, गिरिराज महाराज, और एक बार और हमारे सोसाइटी में देखिए बड़े बड़े महान मतलब शुद्ध भक्त हैं, श्री राधा गोविंद महाराज, मतलब आगे से मैं कह रहा हूँ इमिटेट मत कीजिएगा, राधा गोविंद महाराज ने ये बात स्वयं अपने मुख कमलों से बोली थी कि आप सब जानते हो उन्हें भागवत पढ़ने का बहुत मतलब शौक या आनंद है उनका, उनका जीवन है भागवतम। तो कई बार जब यहाँ पर थे ब्रह्मचारी आश्रम में, जब वो ब्रह्मचारी थे तो वो सुबह जप के समय भागवत पढ़ने चले जाते थे, भागवतम पढ़ते थे, और कई बार मंगल आरती भी नहीं आते थे, वो भागवतम ही पढ़ते रहते थे। तो टेंपल अथॉरिटी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, तो उन्हें बोला गया इस बात को। तो वो भागवत से उन्हें इतना प्रेम था, ये मत समझिएगा वो अपने मन से कर रहे थे ये बात, उन्हें श्रील प्रभुपाद जी ने बोला था जब उनसे मिले, पहली बार जब मिले थे प्रभुपाद जी से उनसे, तो उन्हें बोला था प्रभुपाद जी ने कि आप भागवतम पढ़िए और इसका प्रचार कीजिएगा, आपकी यही सेवा है। तो वो सेवा कर रहे थे। मे भी टेम्पल अथॉरिटीज को ये बात नहीं बताती, तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन पर जोर दिया गया, नहीं आप पूरे मॉर्निंग प्रोग्राम में रहिए, और बोला गया। लेकिन अब वो अपने जो आवेश का, भागवतम का आवेश था, उससे वो नहीं छूट पा रहे थे। वो फिर जब के समय या उस वक्त भागवतम पढ़ते थे 8 बजे तक 9 बजे तक, कई बार प्रसाद में भी नहीं आ रहे, 12-12 एक एक बजे जाते थे, राधा गोविंद जी कहाँ हैं, गोविंद राधा गोविंद कहाँ हैं, किसी को नहीं पता होता था, वो भागवतम पढ़ते रहते थे। तो उन्हें बोला गया ऐसे नहीं है, ऐसा है, मतलब बोला गया तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बाहर जाके पढ़ लूंगा। एक बड़ा स्टेप लिया, देखिए कि बाहर जाके पढ़ लूंगा। कई बार भक्त लोग भी करते हैं, मुझे अथॉरिटी पसंद नहीं है, आई विल लीव टेम्पल, मंदिर छोड़ के चला जाऊंगा। मैं इसीलिए कहता हूँ इमिटेट मत कीजिएगा, क्योंकि पहले उस भाव में आना पड़ेगा तब। तो श्रील प्रभुपाद जी प्रचार करके यहाँ पर आए, तो उन्होंने, अब प्रभुपाद जी कहाँ पर हैं वो, तो अथॉरिटी ने बताया ऐसे ऐसे, प्रभुपाद जी ने कहा नो नो नो। प्रभुपाद जी ने अपनी गाड़ी भेजी, जिस एम्बेसडर में आते थे वही गाड़ी भेजी, उन्होंने बुला के लाओ उन्हें। राधा गोविंद महाराज कहते हैं मेरे आंखों से आंसू निकल आए उस दिन, कि मेरे गुरु महाराज इतना प्रेम करते हैं, मुझसे अपनी गाड़ी भेज दी उन्होंने, इतने सारे भक्त हैं उनके पास, फिर भी प्रभुपाद जी को गुरु को चिंता रहती है। इस तरह से जो सेवा दी जाती है विशेषकर गुरु के द्वारा, तो उसको बड़ी सीरियसली लेना चाहिए। अंतर्धान जी के केस में या इस भागवतम में हम समझते हैं कि उनको इतना ज्ञान था, वो जानते थे ये सब बातें, ऐसा नहीं था उनको, वो किसी नौसिखिए भक्त की तरह नहीं थे, वो हम जैसे नहीं थे या मेरे जैसे नहीं थे कि अपने मन की करेंगे, नहीं, क्योंकि उनका कैरेक्टर पहले बताया गया कम से कम 5-6 श्लोकों में, तब ये श्लोक बोला गया मैत्रेय मुनि द्वारा हमें समझाने के लिए। उन्होंने 100% अपने गुरुजनों से ये अपनी समस्या रखी आगे, उन्होंने कहा ठीक है हमारे पास दूसरे राजा, दूसरा व्यक्ति है जो इस सेवा को देख सकता है, आप ठीक है और ऊंची सेवा में जाइए या यज्ञ कीजिए। इसके अगले श्लोक में प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो उन्होंने यज्ञ क्या करा, उन्होंने श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम ही करा, भक्ति के अंगों को ही उन्होंने अपनाया। प्रभु इसमें भगवद गीता में तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जनक महाराज का उदाहरण देते हैं, आपको शायद पता होगा, ये है श्लोक संख्या 3, माफ कीजिएगा अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 20 में, जहाँ पे कर्म योग की बात की जा रही है, वहाँ पे भगवान बोल रहे हैं बात, कर्मणे विहि संसिद्धि आस्थिता जनकादया लोक संग्रहम एवापि संशय कर्तुम हर्षति। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्म करने में ही संसिद्धि प्राप्त की, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तो भगवान अर्जुन को भी बोल रहे हैं कि महाराज जनक जैसे व्यक्तियों ने भी अपने जो नियत कर्म थे, जो प्रिस्क्राइब ड्यूटी थे, वो करी, किसके लिए, दूसरों को सिखाने के लिए। फिर अपने भी वाले बोलते हैं कि मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं भी करता हूं, किस लिए, दूसरों को सिखाने के लिए। तो इस एक श्लोक से कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मेरा भी मन नहीं लग रहा, मैं कुछ और कर लेता हूं, कभी भी नहीं, बड़ा खतरनाक है। जैसे मायापुर में भक्त गायब हो गया, हम भी गायब हो जाएंगे माया में, पता भी नहीं चलेगा, इसलिए भक्तों के साथ रहना चाहिए। और गाइडेंस मतलब शिक्षा लेती रहनी चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए, इसे कहते हैं साधु संघ, साधु संघ सर्व लव मात्र साधु संघ सर्व सिद्धि हो। साधु के संघ का मतलब ही यही है कि साधु बोलेगा नहीं ये नहीं ये करो, अगर हम अपनी इच्छा से भी अपने मतलब अपने मन से हम भक्ति भी करते रहेंगे, आप खुद देखेंगे कि जीवन में प्रगति हो नहीं रही है, भक्ति में प्रगति नहीं हो रही है, जो अनर्थ हैं वैसे के वैसे ही हैं, और अगर निर्देश के अनुसार भक्ति करेंगे तब देखेंगे कि चरणामृत दे के भी भगवत धाम जा सकते हैं, मंदिर में पोछा लगा के भगवत धाम जा सकते हैं, कोई बहुत बड़ा बड़ा प्रचार करने की जो जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ गुरु बोलते हैं प्रचार कर दो, ठीक है, तो ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है जो श्रील प्रभुपाद जी इसमें समझा रहे हैं अर्जुन का उदाहरण देकर कि प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं छोड़नी चाहिए कभी भी नहीं। और भगवद्गीता के 3:3-4 अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें प्रभु भगवान कृष्ण सिर्फ यही बात कह रहे हैं अर्जुन को, कुछ और नहीं समझा रहे, क्योंकि अर्जुन भी छोड़ना चाहता था। और हम लोग भी कभी भी कई बार शास्त्रों का उदाहरण देके या और ऐसे भक्तों का उदाहरण देके, मतलब जिन सोचते हैं कि उसने करा मैं भी करूं, नहीं। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न या कोई गलती की ठीक करना चाहे तो कृपया बोल दिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने हमारी पहली प्रार्थना मॉर्निंग प्रोग्राम की और आखिरी प्रार्थना दोनों गुरु पर एंड करी है। मैं कई बार ये बोल चुका हूँ, श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, हार ना करी हो मने आशा। मतलब मन में वो आशा भी नहीं आनी चाहिए, करने की तो बात की बात है, सोचना भी नहीं चाहिए व्यक्ति को। यस्य प्रसादा भगवत प्रसादा, यस्य अप्रसादा न गति कुतोपी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं बात, ना गति, गति होगी नहीं जितनी मर्जी कोशिश कर लो, पानी में खड़े हो जाओ ठंडे पानी में या आई डोंट नो खूब सारी माला कर लो 64 माला एक सब में होगा नहीं। क्या नहीं होता, हमें खुद नहीं पता चलेगा हम लिबरेट हैं कि नहीं, गुरु बताएगा। कभी भी ये सोचना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं लिबरेटेड पर्सन ना हूं। माया हमें कई बार ऐसा देगी कि हम लिबरेट हो गए, देखो अब तो मुझे, मैं निर्जला एकादशी कर रहा हूँ, मैं 64 माला करता हूँ और मैं तो मंगल आरती भी आ रहा हूँ रोज, मुझे तो भागवतम के 1500 श्लोक याद हैं, आई एम लिबरेटेड पर्सन। I'm a guru now. Never think like that. इसीलिए बिना गुरु के कैसे भक्ति होगी, गुरु परंपरा है पूरी। हम बहुत भक्त भाग्यशाली व्यक्ति हैं इस परंपरा में। प्रभुपाद जी ने सोसाइटी इसीलिए बनाई क्योंकि इस तरह का लेटस से सो कॉल्ड ज्ञान फैला हुआ सब जगह। गुरु को साल में एक बार देख लो ठीक है, बाकी अपना जो मर्जी करो। अपने माया का बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता है। भगवान कहते हैं ना, देवी यशि गुणमयी मम माया दुरत्या, ये माँ में भी प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आता है। मेरी शरण में आने का मतलब क्या है, भगवान कहते हैं मेरे प्रतिनिधि की शरण में आता है। भगवान को अर्जुन की तरह भाग्यशाली थोड़ी है कि भगवान हमें डायरेक्ट बोल रहे हैं, नहीं। इसलिए ये ज्ञान देने से पहले जो 4th अध्याय है भगवद गीता का, ट्रांसेंडेंट, चौथा अध्याय में भगवान ने जब ज्ञान, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज कहते हैं उसे इंग्लिश में, और हिंदी में ज्ञान योग शायद, दिव्य ज्ञान बोलने से पहले बोला कि ये ज्ञान आया कैसे है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजस्व विदो, वरना क्या बोले भगवान, सीधा बोल सकते थे मैं दे रहा हूँ ज्ञान, पहले बताया ज्ञान आता कैसे है। हमें समझना चाहिए कि ज्ञान अगर ठीक है लेना है, दिव्य ज्ञान कैसे लेना है। कभी भी ये लिबरेशन, और ये जनक महाराज तो भगवान के पिता है ना, तो इसलिए तो धारण दिया भगवान ने कि कई बार व्यक्ति देखिए जिस तरह के मन में ख्याल आते हैं, मैं आपके नहीं कह रहा कि आप ऐसा सोच रहे हैं, माफ कीजिएगा, एक जनरली बात है, है कि कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि मैं लिबरेटेड हो गया। इवन लिबरेटेड पर्सन को भी ये कार्य करना चाहिए। तात्पर्य पढ़िए तब समझ में आएगा प्रभुपाद जी का। इसलिए जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई ये श्लोक ही पढ़े सिर्फ और अनुवाद पढ़े तो वो क्या करेगा, चलो जी मैं तो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के जा रहा हूँ वृंदावन। होता है ना, बहुत लोग आते हैं राइट, बहुत लोग आ जाते हैं ऐसे, बहुत खतरनाक है ये। वृंदावन में आके बेचारे परेशान हो जाते हैं या बहुत, उसको तो भगवान ने बड़ा बोला कि वो तो पाप है, वो भगवान बोलते हैं अगर अपने नियत कर्म को छोड़ दिए तो पाप है वो। किसी को श्लोक याद है, भगवान ने बोला, मैं पढ़ रहा था, मुझे वो श्लोक मिल नहीं रहा क्योंकि मतलब समझना चाहिए उस बात को। प्रभुपाद लिखते हैं उसमें कि नहीं, देखिए अर्जुन भी तो छोड़ना ही चाहता था ना अपना नियत कर्म, उसका क्षत्रिय था, युद्ध करना था, लेकिन वो छोड़ रहा था। और आम आदमी जो भगवत गीता को ठीक से नहीं पढ़ते, सिर्फ उसको कहते हैं कि जैसे जिस कारण भी से भी पढ़ते हैं, ये प्रभुपाद जी की गीता नहीं पढ़ी, वो लोग कई बार ऐसा सोचते भी हैं। और जिन्होंने नहीं पढ़ी वो तो ये लोग कहते हैं ये भगवत गीता तो लड़ाई करवा देती है ना, बताइए। ऐसा नहीं होता, अगर आप भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तब लड़ाई होगी घर में हम देखते हैं समाज में तो भगवत गीता नहीं पढ़ते तो कहाँ है आप, कोई है क्या परिवार, एक साथ संयुक्त परिवार तो अब सपना हो गया, सारे भाई एक साथ रह रहे हैं सब, तो सपना हो गया। वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं, वो कथाएं हो गई। अब पति पत्नी भी साथ नहीं रह पाते, क्यों, ये नहीं पढ़ रहे भगवदगीता नहीं पढ़ रहे, सब कुछ पढ़ रहे, बाकी इंजीनियरिंग ये वो बड़ी बड़ी पोस्ट पर हैं, पत्नी भी मल्टीनेशनल कंपनी में और पति भी मल्टीनेशनल कंपनी में, फिर अलग अलग। डॉक्टर, उसको पता स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ, फिर भी स्मोक, खुद स्मोक कर रहा है, इलाज कर रहा है दूसरे का और खुद स्मोक कर रहा है, तो मतलब अभी ज्ञान नहीं आया उसमें। यस ही नोज सम टेक्निक टू क्योर समबडी, किसी को ठीक करने को उसको पता है, लेकिन उसका अपना ज्ञान नहीं होगा अभी, क्योंकि वो भगवद गीता नहीं पढ़ रहा। इसलिए प्रभुपाद जी की भगवद गीता पूरे विश्व में क्यों पढ़ी जा रही है इस वक्त सबसे ज्यादा, क्योंकि व्यक्ति रियलाइज करता है, और इसको पढ़ने के बाद व्यक्ति गुरु के पास आता है, फिर जब दोबारा पढ़ता था उसको और अच्छे से समझ आती है, अरे यार मैं तो बेवकूफी कर रहा था। कई बार ऐसे होता है आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद फिर व्यक्ति कहता नहीं मैं अपनी इच्छा से करूंगा, नहीं अपनी इच्छा तो सिर्फ प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं केवल जानवर करता है, उसको जो इच्छा वो कर रहा है, जहां खा रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, जब मन आए सो जाए, जब मन आए उठ जाए। मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं है, जो व्यक्ति मनुष्य कहता है उसका जीवन प्रिस्क्राइब्ड बिल्कुल होना चाहिए, स्वर्ग उठना है, ये मेरा जपा का टाइम, ये भागवत, ये सब, वरना होगा नहीं, वरना बड़ा मुश्किल है, असंभव है। मुश्किल क्या है, बिना, प्रभुपाद लिखते हैं, विदाउट एक्सेप्टिंग बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर नोबडी कैन लाइक एडवांस इन डिवोशनल सर्विस। कई तात्पर्य में लिखा हुआ है, विदाउट द गाइडेंस ऑफ द बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर नोबडी कैन एडवांस इन स्पिरिचुअल लाइफ। गाइडेंस लिखा हुआ, गाइडेंस लिखा हुआ, गाइडेंस मतलब हम समझते हैं गाइड करेगा वो आपको। इसीलिए बहुत गुरु के पास जाके तद्विधि पढ़ नहीं पाते हैं ना, परिपरशेन सेवया, सेवा करनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। गौर गोविंद महाराज को जानते हैं आप, गौर गोविंद महाराज प्रभुपाद जी के बहुत अध्यात्म मतलब शुद्ध भक्त हैं। वो तो बोलते हैं शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए और उनके पाँव में गिड़गिड़ा के पूछना चाहिए, मैं आपकी, मुझे बताइए मैं क्या सेवा करूं, बताइए। और वो तो एक बार बोला जाओ भुवनेश्वर, वो भुवनेश्वर छोड़ा ही नहीं उन्होंने। भुवनेश्वर में इस्कॉन मंदिर बनाने के लिए बोला प्रभुपाद जी ने, और बुक ट्रांसलेशन के लिए करा कि उड़िया भाषा में लैंड ट्रांसलेशन करो। अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो वो सोते नहीं थे जब तक उनका प्रिस्क्राइब्ड कि उन्होंने किया था कि मैंने इतने पेज डेली ट्रांसलेट करने हैं, उससे पहले वो सोते ही नहीं थे। और भक्त कहते थे कई बार सुबह सुबह मंगल आरती हो जाती थी और महाराज ट्रांसलेशन कर रहे होते थे, फिर जब पूरा हो जाता था उनकी सेवा फिर बंद करते थे, कहते नाउ आई प्लीज माई गुरु महाराज। नहीं प्रसाद, हाँ प्रसाद में नहीं। अच्छा देखिए देखिए प्रिस्क्राइब ड्यूटी, गुरु महाराज ने बोला है ना इसलिए कर रहे हैं, वरना उनको क्या जरूरत थी। आ गए, देखिए भगवान स्वयं आ गए। जगन्नाथ जी को मतलब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा वहां पर हैं, तो गुरु ने बोला कि आपको इसको लाने की जरूरत नहीं है, ये खुद आएंगे। जगन्नाथ जो खुद आ गए, क्यों? क्योंकि भगवान आते हैं जब भक्त की सेवा करते हैं, भगवान पीछे पीछे आते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ेंगे ना प्रभुपाद, इस सोसाइटी में रह के भक्तों से मिलेंगे। आप अभी आए हैं या पहले से हैं? हाँ तो प्लीज़ यहाँ रहिए, भक्तों से मिलिए। और धन्यवाद, प्रसाद का टाइम हो गया भक्तों का। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।